मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 12 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 14 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अजीत यादव, आप तंदव मिश्रा उत्तर प्रदेश से हैं, योगेश कुमार वर्मा रायपुर तिल्दा छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तरा तारकर चौमुहान उत्तर प्रदेश से हैं, दीपक आप निमार बदेसरा हरियाणा से हैं, पुरुषोत्तम पांडे गिरिडीह झारखंड से हैं, वर्मा धर्मेंद्र गोविंद भाई अहमदाबाद गुजरात से हैं, शैलजा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से हैं, लोकेंद्र जालोरिया इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, इस्तियाक अहमद सिद्दकी आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, मनोज कुमार खगड़िया बिहार से हैं, मोहम्मद जहीद सिद्दकी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, कोरेश कुमार सोनकर कलकत्ता पश्चिम बंगाल से हैं, ताहिरा फारूकी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं और सोनिया मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो अजित, योगेश, उत्तरा, दीपक, पुरुषोत्तम, धर्मेंद्र, शैलजा, लोकेंद्र, इस्तियाक अहमद, मनोज, मोहम्मद जहीद, कोरेश कुमार, ताहिरा और सोनिया, आप सभी 14 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, एक छोटी सी सूचना आप सबके लिए है और वह यह कि YouTube पर पिछले सप्ताह एक प्रोग्राम एकेडमी ने डाला है और वह है कि प्री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान, यहां तक कि एग्जाम जब हॉल में आप जाएंगे वहां तक की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसके तहत कौन से ऐसे 10 बिंदु हो सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। इससे पहले एक और प्रोग्राम, एक और लेक्चर डाला गया था जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि विथ कौन से 10 बिंदु हैं जो आपको करने चाहिए। अब उसके ठीक विरुद्ध ये डाला गया है कि वो कौन से 10 हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सब जो अभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं एक बार इसे देखें, शायद उसका कोई पॉइंट आपके कुछ काम आ जाए। मित्रों, अब दूसरा जो मेरा अब एड्रेस है अभी फिलहाल कुछ समय के लिए वह है उनके लिए जो स्टूडेंट 11 मार्च को यहां क्लास में आने वाले हैं। मित्रों, अब धीरे धीरे मैं कुछ बातें आप लोगों को इसी माध्यम से बताना चाहूंगा ताकि जब तक आप यहां पहुंचे तब तक आपकी पूरी मानसिकता इस तरह की बन चुकी हो कि अब आप एक सैनिक की तरह सब कुछ तैयारी करके और मैदान में उतर चुके हैं। मित्रों, देखिए, जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या आप तैयारी करने के बाद आप इंटरव्यू फेस करते हैं और इंटरव्यू फेस करने के बाद ट्रेनिंग लेकर के आपकी पोस्टिंग हो जाती है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा योगदान होता है या आपकी जो सबसे बड़ी योग्यता मैं मानता हूं वह है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मानसिक मजबूती। देखिए, मानसिक मजबूती तो वैसे भी पूरी जिंदगी भर आपके काम में आने वाला गुण होता है, लेकिन सिविल सर्विस के लिए खासकर, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है, अभी फिलहाल मैं प्रिपरेशन की बात करूंगा, वो प्रिपरेशन स्ट्रेट प्रिपरेशन नहीं है कि आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए जाएं या अपनी तरफ से आप चैप्टर्स पढ़ लें, उन्हें रट लें और फिर आप परीक्षा में लिखाएंगे। अगर आप थोड़े से लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, लंबे समय से नहीं, आप 6 महीने भी बहुत हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि जो बातें किताबों में लिखी गई हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे तो गए हैं लेकिन इस तरीके से नहीं पूछे गए हैं कि किताबों में लिखी गई बातों से ही आपको पूरी मदद मिल जाएगी। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मित्रों, इसके लिए जो गाइडेंस के लिए आप यहां जो 15 दिन आने का आपने फैसला किया है, मैं आपके इस फैसले का पूरा सम्मान करता हूं, पूरा स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डेफिनेटली आपके जो 15 दिन हैं वो आपके सिविल सर्विस के प्रिपरेशन को मूल्यवान बना देंगे, अर्थवान बना देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन एक तरफा नहीं है, हम लोगों को आपके भी साथ की जरूरत है। और आपके साथ का मतलब है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। मजबूत का मतलब है कि यहां जिस तरीके से आप रहेंगे, जिस जो बातें आपको बताई जाएंगी, जैसे बातें बताई जा रही हैं, तो आपको जरूरी है कि आप उन्हें ध्यान से सुने। अभी जब आप अपने घर से चलेंगे तो वो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ हो, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं कुछ पाने जा रहा हूं। अगर आप अनमना भाव रखेंगे, अरे यार जाना पड़ रहा है, क्या टल नहीं सकता, जो अक्सर ज्यादातर लोग सोचते हैं, तो आप मान करके चलिए कि यह मानसिक बीमारी या कह लीजिए मानसिक कमजोरी का लक्षण है। और इस मानसिक कमजोरी से आपको उबरना ही होगा, क्योंकि बात अभी की ही नहीं है, बात लंबी तैयारी की है। और लंबी तैयारी तक की ही बात नहीं है, बात नौकरी करने की भी है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। वहां मानसिक मजबूती हर क्षण आपको दिखानी होगी। तो मित्रों, अभी फिलहाल मैं जो आपको मैसेज देना चाह रहा हूं वो ये कि अगर कभी कहीं किसी भी तरह की कोई मानसिक कमजोरी आपको अनुभव हो रही हो, तो आप उसे मस्तिष्क के स्तर पर ही जीतने की कोशिश कीजिए। कमजोर थॉट्स को हटाइए और उसकी जगह एक स्ट्रांग थॉट्स लेकर के आइए कि नहीं नहीं मुझे करना है, नहीं मैं कर सकता हूं। आप जैसे लोग ही करते हैं, फर्क बस इतना है कि जो करते हैं वो सफल हो जाते हैं, जो करते तो हैं करने का दिखावा करते हैं लेकिन इनफैक्ट सही तरीके से नहीं करते हैं वो रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात करना ही केवल नहीं है बल्कि सही तरीके से करना भी होता है। तो मित्रों, फिलहाल आप सब को सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करें। अभी आपके पास 29 दिन बाकी हैं और आप ऐसा कर सकते हैं, 29 दिन बहुत होते हैं इसके लिए। मित्रों, अब आइए अब हम न्यूज पर कुछ बातें करते हैं। न्यूज आप लोगों ने दोस्तों सुनी होगी, न्यूज में कोई खास महत्वपूर्ण बातें नहीं थी, लेकिन न्यूज को आधार बना करके मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। मुख्य विषय के रूप में आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा नक्शे पर एशिया। ये थोड़ा सा अलग किस्म का विषय आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके माध्यम से मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। न्यूज में आपने जो एक लाइन सुनी होगी हमारे प्रधानमंत्री जी की, और वह है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा आम आदमी का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, है ना। वो अभी आपको मालूम है कि विदेश यात्रा पर गए हुए हैं ओमान और आपके फिलिस्तीनी और सऊदी अरब के, और वहां उन्होंने एक जगह ये बात कही कि इस संदर्भ में वो बात कर रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी है वो विकास के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। उसके तहत ही उन्होंने एक वाक्य कहा था कि टेक्नोलॉजी के द्वारा आम आदमी का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। मित्रों, मान लीजिए कि इस पर आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया गया, निबंध लिखने के लिए, बहुत सरल विषय है, बहुत आसान विषय है। देखिए, जब मैं ये कहूंगा कि आप इस पर निबंध लिखिए, तो आपके दिमाग में यह विचार नहीं आएगा कि ये क्या विषय दे दिया गया, कितना अटपटा विषय दे दिया गया, इस पर मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, यह विचार आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो क्या विचार आपके दिमाग में आएगा? आपके दिमाग में विचार यह आएगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही आसान सा विषय है और इस पर तो बड़े आराम से लिखा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में तो यहां तक आए कि यार ये भी कोई विषय है, कि कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उससे आम आदमी का सशक्तिकरण हो सकता है, इसमें क्या है लिखने के लिए, तो है ही है कि सशक्तिकरण हो सकता है। अब आप देखिए कि जब आप ये सोचते हैं कि ये तो है ही है, सशक्तिकरण होता है, और आप लिखने बैठते हैं तो आपके सामने संकट क्या आता है। मित्रों, इसी संकट को आप समझिए, ये सिविल सर्विस के उत्तर लिखने का सबसे बड़ा संकट है। संकट ये है कि आप 1, 2, 3 पॉइंट लेकर के आते हैं और मैंने कहा है कि आप 1200 शब्दों में लिखिए, तो जब आप 1, 2, 3 पॉइंट लिखने लगते हैं तो आप आगे जब थोड़ा सा भी बढ़ते हैं तो इनफैक्ट आप आगे बढ़ नहीं रहे होते हैं, आप नए तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। मुश्किल ये होती है कि पुराने तरीकों को दोहरा दोहरा कर ही आप आगे बढ़ रहे होते हैं, पुराने पुराने तरीकों को ही दोहरा करके अपने को रिपीट कर रहे होते हैं। आपने कंप्यूटर की बात कर दी तो अब कंप्यूटर की ही आप बात करते चले जा रहे हैं, ठीक है। आपने मोबाइल की बात कर दी तो आप मोबाइल की ही बात करते चले जा रहे हैं। इस तरह से 1-2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं और केवल आप उन्हीं की बात करते चले जाते हैं। और मजेदार बात है कि बात भी जो आप कर रहे हैं वो नए नए बिंदुओं के आधार पर नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं बिंदु उसमें नहीं दे रहे, जैसे मान लीजिए मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल ने कैसे एम्पावर्ड किया है कॉमन मैन को, तो आप उसके भी अलग अलग रूपों को नहीं बता रहे हैं, आपके डायमेंशंस बहुत सीमित हैं। दो तीन जो बहुत ही सामान्य सी चीजें आपके दिमाग में हैं या आप देख रहे हैं या आपके अनुभव में है, बस आप उन्हें ही दोहराते चले जा रहे हैं, जबकि इस विषय के तहत आप ढेर सारे पॉइंट्स दे सकते हैं कि कैसे उनका सशक्तिकरण हो रहा है। और आम आदमी यहां आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, ये हमारी प्रिपरेशन की एक बहुत बड़ी कमी होती है, या कह लीजिए कि अगर प्रिपरेशन हमारी है भी तो हमारे लिखने की एक बहुत बड़ी कमी होती है। और मैं चाहूंगा इस विषय पर आप सब थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा भी मैं क्या कहूं, मतलब कम से कम 1000 शब्द पर तो आप सबको निबंध इस पर लिखना ही चाहिए और अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि जिस विषय को हम बहुत सरल और बहुत आसान कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या वास्तव में हम उसे उस तरीके से लिख पा रहे हैं जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए। मित्रों, अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं और वह है नक्शे पर एशिया। देखिए, मैं नक्शे पर एशिया की बात क्यों कह रहा हूं, कल जब आपने न्यूज सुनी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें एशिया के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई। जैसे एक शब्द आपने सुना पश्चिम एशिया, फिर आपने ये भी सुना दक्षिण एशिया, ये न्यूज के ही शब्द मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपने सऊदी अरब, फिर आपने ओमान और फिर आपने फिलिस्तीनी, इनके नाम तो सुने ही, फिर आपने सुना खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज, ये सब आपने सुने। दक्षिण एशिया का नाम आप ध्यान दीजिए कि सुना होगा कि जो पाकिस्तान की जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थी आसमा जहांगीर जी, उनका निधन हो गया और उन्हें मतलब दक्षिण एशिया में जबरदस्त रूप से श्रद्धांजलि दी जा रही है, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही लोकप्रिय कार्यकर्ता रही हैं, बहुत ही लोकप्रिय रही हैं। तो अब जब हम ये सुनते हैं पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, गल्फ कंट्रीज, तो हम जनरली क्या करते हैं, ठीक है गल्फ कंट्रीज बात खत्म हो गई, पश्चिम एशिया बात खत्म हो गई, लेकिन क्या सच में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इसी तरह से सुनकर के उस बात को खत्म कर देना चाहिए? मैं दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप इसी लेवल पर बात खत्म कर देंगे तो ये मान करके चलिए कि विषय को आपने पढ़ लिया है, विषय को आपने रट भी लिया है, लेकिन इनफैक्ट उस तरीके से नहीं समझा है कि आप इनकी एनालिसिस कर सके। तो मित्रों, मैं जो यहां एशिया की ही बात कर रहा हूं, लेकिन बात सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, यह बात इनफैक्ट यूरोप पर भी लागू होती है, क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप है। मेरे कहने का कुल मतलब यह है मित्रों कि जब तक आप नक्शे का अध्ययन करना नहीं सीखेंगे, सीखेंगे को छोड़िए, सीख तो चुके होंगे आप, जब तक आदत नहीं डालेंगे, तब तक दो तीन विषय ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से नहीं समझ सकते। ज्योग्राफी तो नक्शे का खेल ही है, क्योंकि वो तो ज्योग्राफी ही है। इतिहास को भी आप बिना नक्शे के नहीं समझ सकते। इकोनॉमिक्स में भी नक्शे का बहुत बड़ा रोल होता है, और ठीक इसी तरह से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो जो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप नक्शे का उपयोग करें। और ये जो नक्शे का उपयोग है, अगर एक बार आप धीरे धीरे थोड़ा 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 करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि वो नक्शा आपके जेहन में रच बस जाएगा। फिर आपको बार बार एटलस खोलने की जरूरत नहीं होगी, नक्शे के सामने जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही न्यूज में आप किसी का भी नाम सुनेंगे, किसी भी स्थान का, या आप किताबों में पढ़ेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, तो तुरंत आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा कि ये जगह कहां है। और यह जानकारी, यह स्पष्टता आपको प्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में मदद करेगी, और साथ ही साथ जब आप दूसरे बेंच में जब आप आएंगे और जिन सब्जेक्ट्स की मैंने अभी बातें की हैं, जब उन पर आप एनालिसिस करेंगे उनके प्रश्नों की, तो आप देखेंगे कि नक्शा आपको कितना एम्पावर्ड करता है, आपका कितना सशक्तिकरण करता है आप महसूस करेंगे। और इसके लिए आपको कुछ नहीं, केवल 6 महीने की सतर्कता बरतनी है। 6 महीने की सतर्कता कि जब भी आप किसी स्थान का नाम देखते हैं, एक तो कंट्री का नाम आप सुनते हैं, फिलिस्तीनी कंट्री का नाम है, सऊदी अरब कंट्री का नाम है, इसके बाद फिर आप लोकेशंस सुनते हैं पश्चिम एशिया या खाड़ी देश, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर खाड़ी देश कहा जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है। अगर आप इतिहास में पढ़ रहे हैं कि बालकान क्षेत्र, तो बालकान प्रायद्वीप, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बालकान क्षेत्र कहने से उसमें कौन कौन से देश आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिम यूरोप में कौन कौन से देश हैं। तब जाकर के आप सही मायने में इन सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। जैसे मित्रों खाड़ी देश की बात आई, तो खाड़ी देश जब आप सुनते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकायदे एटलस को खोलें और देखें कि जिस खाड़ी देश की बात हो रही है वो खाड़ी देश कौन से हैं, किसके आप गल्फ कंट्रीज कहते हैं। फिर आपको साफ पता लग जाएगा उसके आसपास जब देखेंगे तो उसमें 7 देश हैं, जनरली बहरीन है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। इन्हीं में से कुछ देशों में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, इसीलिए अरब की खाड़ी या खाड़ी देश की चर्चा न्यूज में आ गई है। तो एक अवसर है जब हम खाड़ी देश के बारे में थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा जान लें। ठीक इसी तरह से जब आप पश्चिम एशिया में जाएंगे तो आप एटलस उठा करके देखिए कि आप वेस्ट की दिशा में देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश हैं, सऊदी अरब, ये आपके जॉर्डन और इजराइल, फिलिस्तीनी, ये सबके सब पश्चिम एशिया में है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी फिलिस्तीनी गए हैं तो पश्चिम एशिया का नाम आ गया। तो कितना आसान हो जाएगा ये सब कुछ जानना समझना, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मित्रों मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा कठिन काम तो है, कठिन काम इस रूप में नहीं कि कोई बहुत आपको लोहे के चने चबाने हैं, कठिन काम इसलिए कि यार उठना पड़ेगा, एटलस खोलना पड़ेगा और उसमें ढूंढना पड़ेगा, तो कौन ये सब करे मित्रों, प्लीज कौन ये सब करे से बचिए, ये सब आपको ही करना है और कौन करेगा। और आपको इसलिए करना है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं और ज्ञान का कोई दूसरा विकल्प नहीं, आपके बिहाफ पर कोई भी इस काम को दूसरा नहीं कर सकता। तो मित्रों ये मेरा कुछ विनम्र सुझाव, मेरे कुछ विनम्र सुझाव थे और मुझे लगता है कि यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो ये आपके बहुत ही अधिक हित में होगा। मित्रों अब मुख्य विषय के बारे में इतना ही। आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के लिए मैं थोड़ी सी अपनी गरीबी का ही प्रदर्शन कर रहा हूं, केवल 2 क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, वो भी आप लोग अपने ढंग से देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं साक्षी वाजपेयी, योगिता, शिवा दुबे, रीना गिरी, रोहित सवधानी, मनिंद्र राय, ज्योति रुद्रपुर उत्तराखंड से, सिद्धार्थ मिश्रा और डाली बरुआ। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।